ओम शांति। आज की मुरली है 18975 की। माया के सर्व चक्रों से परे स्वदर्शन चक्रधारी सो भविष्य शत्रधारी। निर्बल को बलवान बनाने वाले, माया के चक्रों से मुक्त कराने वाले, रहम दिल और स्नेह के सागर शिव पिता बोले, स्वदर्शन चक्रधारी सो भविष्य शत्रधारी बच्चों प्रति बोले। इस मुरली में सबसे पहले बाबा ने रूट प्लान समझाया है कि चक्रधारी से, वर्तमान चक्रधारी से भविष्य शत्रधारी कैसे बनना है। फर्स्ट पैराग्राफ में इस चीज को एक्सप्लेन किया है बाबा ने। बाबा ने बताया है कि इस संगम युग के अति थोड़े समय में जो निरंतर सदा काल के चक्रधारी होंगे, वही भविष्य में सदा काल के शत्रधारी बनेंगे। इसमें फिर आगे बाबा ने बताया है कि जो इस समय निरंतर सदा काल के चक्रधारी होंगे, वही भविष्य में शत्रधारी बनेंगे। तो चक्र इस समय वर्तमान के चक्रधारी वही माया के अधिकारी होंगे, माया के अधीन नहीं, माया के अधिकारी होंगे। फिर वही भविष्य में बेहद के बरसे के अधिकारी बनेंगे और फिर शत्रधारी बनेंगे। तो ये रूट प्लान समझाया है बाबा ने सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर निशानियां बताई हैं कि शत्रधारी की निशानी क्या होगी। जो बच्चे, जो आत्माएं शत्रधारी स्वदर्शन चक्रधारी होंगी, उनके सिर पर लाइट का चक्र दिखाई देगा। वह आत्माएं अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होंगी। वह आत्माएं देह के व्यर्थ संकल्पों के, देह की स्मृति के व्यर्थ संकल्पों से परे होंगी। वह आत्माएं लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से परे होंगी। वह आत्माएं जन्म जन्म के स्वभाव संस्कार से परे होंगी और वह आत्माएं बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों द्वारा अन्य आत्माओं के चक्रों को समाप्त करेंगी। तो ये निशानियां थी जो आत्माएं चक्रधारी होंगी। फिर बाबा ने बताया माया के अधीन जो आत्माएं होंगी उनकी निशानियां क्या होंगी। अगर तो चक्रधारी हैं तो माया के अधिकारी होंगी, फिर बेहद के वर्षे के और फिर शत्रधारी। अगर चक्रधारी नहीं है तो माया के अधीन होंगी, उनकी निशानियां क्या होंगी। तो दो तरह की निशानियां बताई हैं उनकी। जो आत्माएं माया के अधीन होंगी, जिस प्रकार चक्रधारी आत्माएं उनके सिर पर लाइट का चक्र दिखाई देगा, इन आत्माओं के सिर पर विघ्नों का बोझ होगा, मुख और मस्तक पर क्वेश्चन मार्क होगा, हर बात में क्यों, क्या, कैसे, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। बुद्धि जो है वो एकाग्र नहीं होगी और मनसा में बिंदु रूप स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मणा में जो हुआ अच्छा हुआ, सब कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, इस प्रकार बिंदी लगानी नहीं आएगी। तो ये निशानियां फर्स्ट टाइप की मनसा वाचा कर्मणा की। सेकंड, उनके क्वेश्चंस बहुत होंगे स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और बाबा के प्रति। स्वयं के प्रति किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, क्या मैं सफलता मूर्त बन पाऊंगी, क्या मैं दूसरों के स्वभाव संस्कार के अनुसार चल पाऊंगी, क्या मैं संतुष्ट, दूसरों को संतुष्ट कर पाऊंगी। ये है स्वयं के प्रति क्वेश्चंस। सेकंड होंगे दूसरों के प्रति क्वेश्चंस कि ये ऐसे क्यों करते हैं, ये मेरे को सहयोग क्यों नहीं देते, मेरा मान, एक नाम और दूसरा मान होगा। मानता पे, अभी लास्ट संडे भी मुरली चली थी निर्माणता पे के ऊपर, इसके संदर्भ में एक मुझे प्रसंग याद आता है। सिखों के चौथे पातशाही, चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी। जैसे कि हमें पता है कि सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी गद्दी है आगे, उनके दो पुत्र थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, उन्होंने अपनी जो गद्दी है अपने पुत्रों को नहीं दी, लेकिन श्री गुरु अंगद देव जी को दी। तो हम चौथी पातशाही की बात कर रहे हैं, चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी की। उनके जीवन का एक प्रसंग है कि उन्होंने एक बार वो श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद जी से मिलने गए। उस समय उनकी आयु 83 वर्ष की थी श्रीचंद जी की। जब वो गए उनसे मिलने के लिए, तो उनको देखकर श्रीचंद जी बोले कि, पंजाबी में बताऊंगा पहले, कि ए इन्ना लंबा दाढ़ा क्यों बधाया है, मतलब इतनी लंबी दाढ़ी क्यों बना रखी है। उन्होंने थोड़ी टॉन्ट की, तो श्री गुरु रामदास जी ने बड़ी निर्माणता के साथ उत्तर दिया, ये जो दाढ़ी है आप जैसे महापुरुषों के चरण साफ करने के लिए बढ़ा रखी है। तो कितनी निर्माणता के साथ उन्होंने उत्तर दिया। तो आगे से श्रीचंद जी ने उत्तर दिया कि इसी निर्माणता के कारण आप गद्दी ले गए, इन्हीं गुणों के कारण आपको गद्दी मिल गई, और हम मतलब ये चीज थी। तो निर्माणता क्या नहीं कर सकती, निर्माणता का गुण। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस दूसरों के प्रति होंगे। तो थर्ड है बाबा के प्रति क्वेश्चंस। वो बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस पूछते हैं। बाबा कहते, सबसे पहले बाबा से कहेंगे, बाबा आप तो सर्वशक्तिमान हो, तो मेरी बुद्धि को पलटाते क्यों नहीं। फिर कहेंगे, बाबा आप तो नजर से निहाल करने वाले हो, तो मेरी तरफ नजर क्यों नहीं करते। फिर कहेंगे, बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हो, मेरे आधी मध्य अंत सभी को जानने वाले हो, तो अपनी शक्ति द्वारा मुझे ऊंच पद क्यों नहीं दिलवा देते। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तीन प्रकार के, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और बाबा के प्रति। फिर बाबा ने आगे बताया कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। कहेंगे, एक तो पहले ही जन्म जन्म के विकर्मों का बोझा सिर के ऊपर है, और दूसरा बाप के बच्चे होने के नाते बाप से प्राप्त सर्व अधिकार के रिटर्न के फर्ज को ना निभाने के कारण ये जो फर्ज है वो कर्ज बन जाता है। तो दो प्रकार के कर्ज हो गए, एक तो हो गए जन्म जन्म के विकर्मों का बोझ, उसका कर्ज, और दूसरा फर्ज ना निभाने का कर्ज। तो बाबा कहते, इस तरह डबल कर्जधारी आत्माएं शत्रधारी स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन पाएंगी। तो ये रिजल्ट है इन क्वेश्चंस का। फिर आगे बाबा ने इसका सोल्यूशन भी बताया। बाबा कहते, ऐसी आत्माओं की आवाज सुनाई देती है कि बाबा अनुभव नहीं होता, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो बाबा कहते कि बच्चे, बाबा इस क्वेश्चंस को देख के बाबा पूछते हैं, बाबा क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को देखकर। तो बाबा कहते, मुस्कुराएंगे ही बाप दादा, और क्या करेंगे। तो बाबा कहते, फिर भी इन बच्चों के प्रति बाबा उनको उमंग उत्साह में लाने के लिए कहते हैं कि तुम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुमने ऐसा बहुत बार किया है, रुकना नहीं है, चलते रहो। फिर बाबा कहते कि दिन में एक सेकंड के लिए भी दिल से और सर्व संबंधों से याद करोगे, तो इस एक सेकंड की याद की अनुभूति आपको पूरा दिन बाप के प्रति आकर्षित करती रहेगी। तो इस प्रकार फिर आगे बाबा ने बताया, इसमें वरदान दिया बाबा ने कि अगर आप एक सेकंड के लिए भी बाबा को याद करते हो, तो बाप दादा का वायदा है, वरदान है कि आपको 1000 गुना इसकी मदद मिलेगी। तो इस प्रकार अगर माया के अधीन है तो इस पाथ को फॉलो करके हम वर्षे के अधिकारी और भविष्य में शत्रधारी बन सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। तो हमें ओम वर्ग मिला था 25 मई 1973। तो मुरली का हेडिंग है भविष्य प्लान, तो इसमें बाबा ने बताया भविष्य में आप कैसे प्लान करोगे, तो शॉर्ट समय में शॉर्ट प्लान भी शॉर्ट हो, समय भी शॉर्ट है, इसलिए आपको पावरफुल प्लान बनाना है। मना संदेश देने का जैसा शॉर्ट समय में संदेश देना है उसके बारे में बाबा ने बताया। तो उसमें पहली पॉइंट है, तो बाबा ने बताया अब जिस धरती पे संदेश देने जाते हो उस धरती में पहले आप क्या करते हो, स्टेज तैयार करते हो, उसके बाद स्पीच तैयार करते हो, उसके बाद क्या करते हो, पब्लिसिटी की भी तैयार करते हो, पब्लिसिटी में भिन्न भिन्न साधन प्रयोग करते हो। तो इस तीन साधनों से उसी स्थान की आत्माओं को आप संदेश देते हो, इस साधनों से आपको विश्व में जो भी आत्मा है अंश मात्र है, थोड़े आत्माओं को ही संदेश मिल रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़े शॉर्ट समय में शॉर्ट प्लान से सारे विश्व के आत्माओं को आपको संदेश देना है, उसके लिए प्लान बनाना है, भविष्य प्लान। तो सेकंड पॉइंट में बाबा ने इस प्लान को साकार रूप में लाने के लिए दो बातें बताए, अगर ये दो बातों के प्रैक्टिकल में अनुभवों के आधार से आप ये भविष्य प्लान बना सकते हो, अगर वो दो बातें हैं, पहली बात है साक्षात बाप मूर्त और दूसरी बात है साक्षी और साक्षात्कार मूर्त, ये दो बातों के अनुभव आप लाएंगे तो आपका भविष्य प्लान जो है पावरफुल बन जाएंगे। तीसरी पॉइंट में बाबा ने बताया आपके सूरत में जो भी कर्मेंद्रियां हैं उस कर्मेंद्रियों द्वारा बाप का चरित्र का साक्षात्कार कराओ और बाप का कर्तव्यों का साक्षात्कार कराओ और बाप का गुणों की महिमाओं का साक्षात्कार कराओ, तब विश्व की आत्माओं को संदेश थोड़े समय में मिल सकेंगे। और चौथी पॉइंट में बाबा ने बताया आपके नयनों के आधार से सभी को निहाल हो जाए, माना आपके नयनों की दृष्टि से अन्य आत्माओं का दृष्टि वृत्ति स्मृति और कृति सारे चेंज हो जाए, ऐसा आपके नयनों से सेवा करिए। और नयनों के बाद आते हैं मस्तक से, आपके मस्तक से स्वयं के स्वरूप को और अन्य आत्माओं के स्वरूप को साक्षात्कार कराओ, और होठों से आपकी रूहानी मुस्कुराहट से अविनाशी खुशी का साक्षात्कार कराओ। और बाबा ने बताया आपके सर्व कर्मेंद्रियों से वर्तमान समय की श्रेष्ठ पोजीशन की और भविष्य की श्रेष्ठ पोजीशन की साक्षात्कार कराओ, ऐसी बाबा ने बताया। फिफ्थ पॉइंट में बताया आपके एक श्रेष्ठ संकल्प से, आपका एक श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प व विकल्प दोनों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से उनको किनारा अल्प समय में किनारा कर दो, बोले बाबा। और बहुत अच्छी बहती बाढ़ व्यर्थ संकल्प व विकल्प की बहती हुई बाढ़ और अपनी शक्ति से उनको अल्प समय में किनारा कर दो। और बाबा ने बताया आपके एक बोल से अनेक समय से भटकती हुई आत्माओं को मंजिल और किनारा मिल जाए, एक बोल कौन सा है, शिव बाबा, आपके मुख से शिव बाबा निकले उनको मंजिल और निशाना दिखाई दे। छठवीं पॉइंट में बाबा ने बोला जैसा माइक स्टेज के ऊपर माइक रहते हैं ना, माइक से बोले तो सारे ओर आवाज फैलता है, ऐसे एक स्थान पर आप एक संकल्प करो एक नजर डालो तो वो आपका संकल्प और नजर सारी आत्माओं तक पहुंच जाए, ऐसा संकल्प और नजर डालो। सातवीं पॉइंट में बाबा ने बोला जैसा स्टेज होता है स्टेज के ऊपर स्लोगन्स होते हैं तो आपके स्थिति रूपी स्टेज में आप धारणाओं के स्लोगन रखो, बोले बाबा। पहली स्लोगन है मैं आत्मा विश्व कल्याण के प्रति सर्वशक्तिवान बाप से निमित्त बनी हुई आत्मा हूं, मैं आत्मा विश्व कल्याण के प्रति श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से निमित्त बनी हूं, ऐसे स्लोगन रखे हो तो स्लोगन आपके स्थिति में रहे तो वो स्टेज है ना सुंदर दिखेगी। और दूसरी स्लोगन बोला बाबा ने महादानी और वरदानी बनो, महादानी और वरदानी बनो बोले बाबा। इसमें बाबा ने बोला बहुत सारी आत्माएं वरदान लेने के और देने के साहस नहीं ले पाते, वरदान देने भी नहीं पाते और लेने भी के भी साहस नहीं कर पाते। उन आत्माओं को आपको बाप द्वारा मिली वरदान और आपके श्रेष्ठ स्थिति का सहयोग से उनको वरदान दो बोले। ये 7 पॉइंट है बाबा के रिवाइज। पहली पॉइंट है आप जिस धरती पर सेवा करने जाते हो उस धरती पे स्टेज स्पीच और पब्लिसिटी तीनों तैयार करते हो। इस साधनों से आपको अंश मात्र आत्माओं के संदेश मिल रहे हैं, इसलिए शॉर्ट टाइम में शॉर्ट प्लान और पावरफुल प्लान आपको बनाना पड़ेगा। ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है इस शॉर्ट प्लान बनाने के लिए दो शब्दों का प्रैक्टिकल को अनुभव के आधार से होगी। वो दो शब्द है साक्षात बाप मूर्त और साक्षी और साक्षात्कार मूर्त आपको बनना पड़ेगा। और तीसरी है आपके सूरत में जो भी सर्वकर्मेंद्रिया है वो सर्वकर्मेंद्रियों से बाप का चरित्र का साक्षात्कार हो, बाप का कर्तव्यों का साक्षात्कार हो, बाप का गुणों का महिमाओं का साक्षात्कार हो, ऐसे बोले। चौथी पॉइंट है आपके नयनों की दृष्टि द्वारा सर्व आत्माओं के दृष्टि नजर से निहाल। उसी को एक्सप्लेन करते बाबा बोले आपके दृष्टि द्वारा सर्व आत्माओं का दृष्टि वृत्ति स्मृति और कृति चेंज हो जाए, ऐसे बोले बाबा ने। और मस्तक से आपका स्वरूप और अन्य आत्माओं का स्वरूप का साक्षात्कार हो, होठों से रूहानी मुस्कुराहट और अविनाशी खुशी का साक्षात्कार हो, ऐसा बोले बाबा। और आपके सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन की और भविष्य पोजीशन की साक्षात्कार हो, ऐसे बोले बाबा। पांचवें पॉइंट में आपका एक श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प व विकल्पों से के भाड़ अल्प समय में वो भाड़ से उनको किनारा निकालो, ऐसे बोले। और आपके मुख से निकले हुए एक शब्द शिव बाबा जो है ना, उस ये शिव बाबा बोलने से उनको मंजिल और निशाना दिखाई पड़े। सिक्स्थ पॉइंट में बाबा बोले लाइट हाउस माइक आपका जो भी एक संकल्प और एक नजर है ना, चारों तरफ एक स्थान रहते हुए भी चारों अन्य आत्माओं तक पहुंच जाए, माइक श्रेष्ठ माइक बनना पड़ेगा। सेवंथ पॉइंट जो है ना स्लोगन, बाबा ने दो स्लोगन याद रखने के लिए बोला है, वो है मैं श्रेष्ठ आत्मा विश्व कल्याण के प्रति स्वयं सर्वशक्तिवान बाप से निमित्त बनी हूं। दूसरा स्लोगन है मैं आत्मा महादानी वरदानी। ओम शांति।
ओम शांति। 7 मिनट में 7 पॉइंट, उसमें हम सुनेंगे 22/10/70 की अव्यक्तवाणी। उसका हेडिंग था फूल की निशानी फ्लोलेस, फूल यानी फ्लावर नहीं, FUWL फूल। तो उसमें 7 पॉइंट निकाले हमने। पहला पॉइंट है यानी फूल बनना है, फेल नहीं होना है। तो उसमें बाप दादा के सम्मुख दादियाँ बैठी थी, तो बाबा आधे रतन को देख रहे थे और परख भी रहे थे कि बच्चे का तक यानी फूललेस बने हैं, सॉरी फ्लोलेस बने हैं यानी फूल बने हैं। तो ये बाबा परख रहे थे और बच्चे को क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप फूल बने या फेल बने, तो फूल बनना है फेल नहीं बनना है। और उसके लिए बाबा ने बताया है कि जैसे बाप की महिमा है यानी सब बातों में फूल है बाप, वैसे बच्चे को भी फूल बनना है। और जैसे बाप मास्टर नॉलेज फूल है, वैसे बच्चे को भी मास्टर नॉलेज फूल बनना है, सिर्फ नॉलेज फूल नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट है कि बाप दादा एक एक रत्न में 3 बातें देख रहे हैं। तो उसमें बाबा ने 3 बातें देखी एक एक आधे रतन में, एक लाइट, दूसरा माइट और तीसरा राइट। तो राइट का डेफिनेशन बाबा ने बताया है कि दो अर्थ बताए हैं, एक राइट अर्थात यथार्थ और दूसरा राइट अर्थात अधिकारी। तो बच्चे यथार्थ कहाँ तक बने हैं और अधिकारी कितने बने हैं, तो इस प्रकार बाबा ने लाइट माइट और राइट तीन बातें बच्चों में देखी। तीसरा पॉइंट है कि आवाज आवाज फैलाने में तो सभी पास है, लेकिन आत्माओं को बाप के सम्मुख लाने की सेवा करने बोले बाबा ने, तो उसमें जो सेवा समाचार बाबा को सुनाया तो सेवा समाचार सुनकर बाबा बहुत खुश हो गए। तो बाबा ने सुनाया यानी बाबा ने कहा बच्चों को कि सेवा में तो सभी एक नंबर, यानी आवाज फैलाने में तो एक नंबर है, आवाज और सेवा बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अभी आत्माओं को बाप के सम्मुख लाने की सेवा करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप बच्चों को आवाज से परे जाने पड़ेगा। जब आवाज से परे जाएंगे तब आप आवाज द्वारा यानी आत्माओं को बाप के सम्मुख ला सकते हैं, तो उसके लिए यानी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और दूसरी बात बताई कि अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तब आत्माओं को बाप के सम्मुख ला सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि शिव शक्ति सेना को अपना सूरवीरता का जो रूप है वो नयन और चयन द्वारे प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने बोला उन शिव शक्ति यानी दादियों को कि आप सूरवीर हो तो आपका सूरवीरता का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वह नयन और चयन द्वारे प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, कि जो भी आसुरी वृत्ति की आत्माएं है वो आपके सामने आने की हिम्मत न रखे। तो कभी कभी क्या होता है बताया है कि जब अपने जो लक्षण आसुरी लक्षण है और दूसरी आत्मा के आसुरी लक्षण में कभी कभी आकर्षित हो जाती है और आकर्षित होते है और बच्चों के क्या बोल निकलते हैं, यानी रायल माया के रूप से बोल निकलते हैं कि बाबा क्या करे, वाइब्रेशन भी वैसा था, वायुमंडल भी वैसा था और समस्या भी थी, इसके कारण हार हो गई। तो बाबा ने बताया कि ऐसे जो कारण है कारण का आगे नहीं रखो, तो यानी प्रत्यक्ष यानी कार्य में लाके देखो, कारण को आगे रखना यानी कारागृह में दाखिल होना है, तो ऐसे कारागृह में दाखिल नहीं होना है। तो उसके लिए बाबा ने और शिव शक्ति को बोला है कि आगे और सी परिस्थिति आएंगे यानी आप ऐसा साक्षात्कार करेंगे धर्मराज का, यानी जो भी सही जाए उसका साक्षात्कार भी करेंगे, तो उसकी अनुभूति करेंगे, तो वो भी समय आएगा, तो उसके लिए यानी और दूसरा एक साक्षात्कार करेंगे ऐसा बताया है कि वो यानी एक संकल्प का यदि भूल की तो एक का 100 गुना दंड कैसा मिलेगा, तो वो भी सम्मुख में आप अनुभव कर सकेंगे, वो भी समय आएगा। इसलिए बाबा ने बताया है कि कारण को आगे नहीं रखो तो कार्य करके दिखाना है। चार पॉइंट हो गए। और पांचवा है जब आपका संपूर्ण प्रत्यक्ष रूप सामने आएगा, प्रत्यक्षता होगी, अपने संपूर्ण स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी, तब भक्त आत्माएं यानी आप इष्ट देवता का यानी प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। सातवां, ये पांचवा हो गया। और छठवां यानी परीक्षा के समय में, यानी अभी परीक्षा का समय आएगा तो उसमें पेपर देने के लिए तैयार हो जाना, अभी परीक्षाओं के पेपर देने में तैयार हो जाओ, तो परीक्षा के पेपर देने में तैयार हो जाओ। इसमें बाबा ने बोला है कि जैसा मिलिट्री वाले का एग्जांपल दिया बाबा ने कि जैसे मिलिट्री वाले दो प्रकार के सिटी बचे थे, फर्स्ट सिटी और लास्ट सिटी, तो वैसा अभी समय भी नाजुक, समय की जो सूचना है वो फर्स्ट सिटी है और वो फर्स्ट सिटी में यानी तैयार हो जाना है कि अभी बाबा ने मार्शल फर्स्ट सिटी और लास्ट सिटी इतना ही बताया है, वहां पर दो सिटी यानी स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट सिटी बचे थे और लास्ट एंडिंग होते तब लास्ट सिटी, तो वैसा वहां बोलते हैं फर्स्ट सिटी है क्योंकि समय की नाजुकता ये फर्स्ट सिटी है, तो अभी नाजुकता देख करके हमें तैयार हो जाना है कि अभी परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाना। इसलिए बाबा ने सेकंड अभी बची नहीं, बाकी है बची नहीं, तो उसके लिए अवन बोला कि ऐसा यानी बेपरवाह नहीं बनना। बोले कि बाबा तो अव्यक्त अव्यक्त वतनवासी, हम व्यक्ति में तो कुछ भी गया तो चलेंगे, मगर ऐसा ईश्वरीय कार्य में यानी बेपरवाह नहीं बनना। जो भी ईश्वरीय मर्यादा है उसमें बेपरवाह नहीं बनना है, तो माया के इसमें बेपरवाह बनना है। बोलते जो भी आप संकल्प करेंगे, देखिए संकल्प यानी वतन में इमर्ज होता है, वो चित्र स्पष्ट होते, ये बाबा ने बताया है। और अभी सातवा है, हर्षित मुक्ता का गुण पुरुषार्थ में बहुत मदद करता है। तो जैसे बाबा ने बोला है, जैसे अपने चेहरे पर हर्षित मुक्ता दिखते हो, वैसे आत्मा भी हर्षित मुख बनाओ, क्योंकि जो हर्षित मुक्ता का गुण है यानी नेचुरल गुण है, वो आत्मा में लाओ, ऐसा बताया है। तो जब अपने आत्मा में हर्षित मुक्ता का गुण लाएंगे तो माया के कोई भी आकर्षण में अपन आकर्षित नहीं हो जाएंगे। तो बाबा ने ऐसी गारंटी बताई दादी को, मैं गारंटी देता हूँ कि यदि सदैव आप यानी हर्षित मुख रहेंगे तो माया के आकर्षण आपके आकर्षित नहीं हो जाएंगे। ये गारंटी सिर्फ आप महारथी को देता हो, जो आदि रत्न उनको देता हो, बाकी को नहीं बोला बाबा ने, क्योंकि आप आदि रत्न हो। तो ये आदि रत्न है तो आदि देव को बहुत स्नेह है आदि रत्न का, इसलिए अभी आदि बनो, आदि से अनादि बनो। यदि अनादि बनेंगे तो माया के आकर्षण से आप मुक्त बन जाएंगे, यानी आकर्षण से आकर्षित नहीं होंगे। तो इस प्रकार ये 7 पॉइंट हो गए। तो पहला है फूल बनना है फेल नहीं, और दूसरा है 3 बातों में बाबा हर एक एक रत्न में 3 बातें देखता है। तीसरा है यानी अभी आवाज फैलाने में सभी पास है, लेकिन आत्माओं को सम्मुख लाने की सेवा करो। चौथा है शिव शक्ति सुरवीर रूप नयन और चयन द्वारा प्रत्यक्ष करो। और छठवा है यानी आपके संपूर्ण, पांचवा आपका संपूर्ण स्वरूप प्रत्यक्ष होगा, तभी भक्त प्रत्यक्ष रूप में आप इष्ट देव का साक्षात्कार करेंगे। और छठवा है अभी परीक्षाओं के पेपर भी देने में तैयार हो जाओ, दो स्थिति। और सातवा है हर्षित मुक्ता का गुण से हर्षित मुक्ता का गुण पुरुषार्थ में बहुत मदद करता है। ओम शांति।
ओम शांति। मुरली डेट है 30 नवंबर 1970, 30 नवंबर 1970, और मुरली का टॉपिक है वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। मुरली की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। किसी देश में एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत यज्ञ किए, तप किए, और बड़े वरदानों के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने यह ऐलान किया कि उनके राज्य में किसी भी प्रजा को कोई भी पारितोषिक चाहिए, कोई भी गिफ्ट चाहिए, वो राजमहल आके ले सकते हैं। उन्हें राजमहल में कोई भी चीज पसंद आए वो उसे आकर क्लेम कर सकते हैं। तो देखते देखते प्रजा निवासी आए और शाम तक उन्होंने पूरा राजमहल खाली कर दिया। शाम को एक छोटी सी बच्ची आई राजमहल में। धीरे धीरे उसने कदम लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में राजा बैठा था। उस बच्ची ने जाके राजा को पकड़ लिया। जिस बच्ची ने राजा को पकड़ लिया, राजा की सारी संपत्ति उसकी हुई, राजा की सर्व शक्तियां भी उस बच्ची की हुई। और हमें भी उस बच्ची की तरह ही होना है, हमें भी उस एक के साथ ही एक होना है। वी हैव टू बी वन विद द वन। बाबा ने इस मुरली में मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों की निशानियां बताई हैं। पहली निशानी है फीलिंग से परे, दूसरी निशानी है फुल नॉलेजफुल, और तीसरी निशानी है सर्व संबंध एक बाप साथ। फीलिंग से परे मतलब हमें फीलिंग देवी नहीं बनना है। अगर आपके सेंटर में चाय बनी, सबको मिली और आप छूट गए, मतलब ये नहीं कि आप फीलिंग में आ जाएं। फुल नॉलेजफुल बच्चे वो हैं जो फीलिंग में नहीं आते, और फुल नॉलेजफुल बच्चे वो हैं जिन्होंने ड्रामा का राज समझा और उसे बुद्धि में बिठाया। सर्व संबंध एक बाप के साथ। हमें अपने योग के द्वारा उस एक के साथ एक होना है, टू बी वन विद दैट वन। बच्चों ने बाबा को बोला कि हमारा योग नहीं लगता और योग के समय हमारी बुद्धि यहां वहां भटकती है। तो बाबा ने कहा कि जब आपका दूसरों से नाता टूट जाएगा और एक बाबा से जुड़ जाएगा तो आपके सब व्यर्थ संकल्प रुक जाएंगे और एक के साथ जुड़े रहेंगे और आपका योग बना रहेगा। दूसरा पॉइंट, ये अधर कुमारों की योग भट्टी थी। तो बाबा ने उन बच्चों से पूछा कि क्या आप यहां अपनी चेकिंग करने आए हैं या अपनी बैटरी को चार्ज करने आए हैं। कई बच्चों ने कहा कि हम अपनी चेकिंग करने आए हैं और कईयों ने कहा कि हम अपनी बैटरी चार्ज करने आए हैं। बाबा ने कहा कि दोनों ही सही हैं, कि मधुबन आए हो योग बल से अपनी चार्जिंग करके जाओ और यहां आए हो तो अपने पुरुषार्थ की चेकिंग करके जाओ। बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया, वैल्यूएबल वर्कर्स सर्विसेबल ग्रुप। वैल्यूएबल वर्कर्स सर्विसेबल ग्रुप, ये टाइटल दिया बच्चों को। और बाबा ने यह भी कहा उन्हें कि यह टाइटल ही नहीं है, ये आपका लक्ष्य भी है, जाने से पहले समान बनकर जाना। वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस, बाबा कहते हैं कि वतन से वो कई बार दिन में नीचे देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों के झूलों में झूलते हैं। बाबा ने कहा कि ये संगम युग है, व्यर्थ के झूलों में झूलने का समय नहीं है, सर्व प्राप्तियों के सर्व सुखों के झूलों पे झूलने का समय है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, बाबा ने कहा कि सब बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं पर प्रारब्ध का कच्चा फल संगम में ही खाकर अपना जमा का खाता भोग डालते हैं। बाबा ने कहा है कि संगम में अपने जमा के खाते पर फोकस करो। वर्कर्स माना एक्शन, और बाबा ने कहा है कि वर्कर्स का अगर पर्पस एक्शन है तो सोचने का काम उन्हें बाबा को दे देना चाहिए, और हम अपनी सोचने का काम बाबा को खाली तब दे सकते हैं अगर हम उनके साथ एक हैं। अगर हमारी बुद्धि उनके साथ जुड़ी है तो बाबा हमारे लिए सोचने का काम भी करेगा। सातवां पॉइंट, बाबा ने बच्चों को स्लोगन दिया कि प्योरिटी में ही प्रॉस्पेरिटी है। जिन बच्चों ने संगम युग में प्योरिटी का व्रत लिया उन्हें सतयुग में, त्रेता में और द्वापर के अंत तक सुख भोगने को मिलेगा। और यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि द्वापर के शुरू से ही सबको दुख और सुख की अनुभूति हो जाएगी। और अगर हमने इस श्रेष्ठ संगम युग में पवित्रता का पाठ पूरा किया अपना, तो हमें तीन टाइम सतयुग, त्रेता, द्वापर के एंड तक सुख की अनुभूति होगी। यहां पे टीचर बहनें कौन हैं? बाबा ने टीचर बहनों के लिए स्पेशल होमवर्क दिया है कि वो प्योरिटी बाबा ने टीचर बहनों के लिए स्पेशल होमवर्क दिया है कि वो प्योरिटी का पाठ समझें और बाकियों को विस्तार में समझाएं। तो जैसे सचिन भाई ने कहा कि हम सब टीचर्स हैं, हम सबको अपना प्योरिटी का पाठ समझना है और विस्तार में जाके सबको समझाना है। अब रिवाइज करेंगे। बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों की निशानियां बताई। बाबा ने यह बताया कि आप मधुबन आए हैं तो अपनी चेकिंग करिए और अपनी बैटरी को चार्ज करके जाइए। और बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया वैल्यूएबल वर्कर्स स्पेशल ग्रुप। और बाबा ने कहा कि वो बार बार वतन से नीचे देख के बच्चों की सर्कस देखते हैं। अति इंद्रिय सुख के झूले पे झूलना है, व्यर्थ संकल्पों के झूले पे नहीं। और बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ पर ध्यान दो, प्रारब्ध पर नहीं, जमा के खाते को देखो। और बाबा ने कहा कि वर्कर्स यानी करता, नॉट सोचता, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, सोचने का काम बाबा का है। और बाबा ने हमें स्लोगन दिया संगम युग के लिए, प्योरिटी। ओम शांति।